क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
मरुभूमि में माल ढोक। शाम होने के साथ ही चरवाहे की सरकंडे से बनी बांसुरी के सुर भी ढल गए। शाम के धुंधलके में भेड़े निमियाती और बीच बीच में आपस में टकराती घर की ओर चली जा रही थी। भेड़ों के रेवड़ की एक ओर एक अनोखा चरवाहा चल रहा है। शुतुरमुर्ग जैसी मजबूत टांगों वाला यह चरवाहा भेड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान की रेत पर अपने पंजों की तीन मोटी उंगलियों के निशान छोड़ता जाता है। गगन एक बड़ा सा पक्षी जिसे कहीं माल ढोक और कहीं गोंडावन भी कहा जाता है, वह रेगिस्तान में अपने माता पिता से बिछुड़ गया था जब चेतन उसे अपने घर ले आया था। चेतन ने उसे भेड़ चराने का काम सिखाया। चेतन ने मोटे से सरकंडे से बना अपना नढ़ यानी बांसुरी कंधे पर लटका ली। चेतन ने अपनी चरवाहों वाली लाठी को अपने दोनों कंधों पर रख उस पर अपनी बाहें फैला दी। ऐसा करने से उसकी बाहों की थकान मिट जाती थी। बड़ा सा शाफो यानी साफा उसे राजस्थान की कड़ी धूप से बचाने के लिए काफी नहीं था। धूप से तपे हुए थके पांव आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा था। एक पैर में उसने धुमावधार नोक वाली पुरानी जूती पहन रखी थी। एक पैर में उसने घुमावदार नोक वाली पुरानी जूती पहन रखी थी। दूसरा पांव नकली था, जिसे जयपुर फुट कहा जाता है। खास तौर पर उसके लिए तैयार इस सस्ते और लचीले नकली पांव के सहारे वह चलने और दौड़ने के साथ साथ उकड़ू बैठ सकता था और पेड़ों पर चढ़ भी सकता था। चुस्ती फूर्ती में वह गांव के किसी बच्चे से कम नहीं था। भला हो उसके काको और काकी का, इनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। यह सोचते ही गगन के होठों पर मुस्कान दौड़ जाती। पोलियो हुआ तो उसे उसके माँ बाबा ने छोड़ दिया, लेकिन काको और काकी ने भरपूर प्यार दिया और साथ ही उसके लिए जयपुर फुट भी बनवाया। भेड़ों को उनके बाड़े में हांकने के बाद चेतन पुराने खोजरी के पेड़ के नीचे बने अपने झोपड़े की ओर बढ़ा। काकी के हाथ के स्वादिष्ट खाने की महक से उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह वहीं ठिठक जाता है। काको के साथ यह कौन अजनबी खाना खा रहा है? आजा चेतन, काको ने उसे हंसते हुए अपने पास बुलाया। आ, हमारे घर पधारे मेहमान से मिल।
नमस्ते साहिब, चेतन ने झुक कर कहा, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। ये क्या, ये सपेरा है?
उसने कनखियों से देखा तो उसकी नजर फर्श पर रखी पुंगी और पास रखी हुई चपटी टोकरी पर जाकर ठहरी। कहीं इसका नाग मुझ पर फूफकार तो नहीं मारेगा, वह सोचने लगा।
यह है हमारा इकलौता बच्चा, हमारा बेटा,
काको ने कहा और चेतन को अपनी बांह में भर कर पास खींच लिया।
अच्छा,
सपेरा अपनी उंगलियां चाटते हुए बोला। हाथों को धोकर उसने अपने बंधेज के लाल साफे को खोलकर झाड़ा। उसकी लाल लाल आंखों ने झोपड़े के बाहर कीड़े मकोड़े चुगता माल ढोक देख लिया।
बढ़िया भोजन कराने के लिए धन्यवाद, अगली बार हम पक्षी का मांस खाएंगे,
उसने अपने पीले पीले दांत दिखाते हुए कुटिलता से हंसते हुए कहा।
अब नहीं,
चेतन फट पड़ा।
हाँ हाँ, देखेंगे, मिलते हैं,
सपेरे ने अपनी टोकरी और पुंगी उठाते हुए कहा।
मेरे माल ढोक को छूने की कोशिश न करना, चेतन ने चिल्लाकर कहा और रेत में दूर तक उसके पीछे पीछे गया।
अच्छा जी, तुम मुझे ललकार रहे हो,
सपेरे ने अपनी टेढ़ी नाक और घनी मूछों के पार उस पर नजरें गड़ाकर पूछा, फिर पुंगी को उठाकर होठों से लगा लिया। चेतन थरथरा उठा। अचानक उठे डर ने उसके दिल में भरे जोश को मसल कर रख दिया। चौकड़ी भरने को तैयार हिरन जैसी फूर्ती से चेतन ने अपनी नड़ में फूंक मारकर माल ढोक को होशियार करने वाली धुन छेड़ दी। गगन ने बारी बारी से बाएं और दाएं की ओर टेढ़ा मेढ़ा दौड़ते हुए रफ्तार पकड़ी और डैने लगातार फड़फड़ाते हुए हवाई जहाज की तरह उड़ान भरी। मिनट भर में रेत के टीलों के पार उड़ गया।
अच्छा हुआ, गगन के पंखों की फड़फड़ाहट से चेतन खुश हुआ।
कुछ देर में उसके दिल की धड़कन फिर सही होने लगी। उसे मालूम था कि गगन सुबह होने पर भेड़ हांकने में मदद करने के लिए लौट आएगा। जैसे ही सवेरे के सूरज ने आसमान में उजाला फैलाया, चेतन भेड़ को बाहर निकालने के लिए बाड़े की ओर दौड़ गया। सूजी हुई आंखों और भींची हुई मुट्ठियों के साथ चेतन खोजने निकल पड़ा।
गगन, तू कहाँ गायब हो गया रे?
अपनी भेड़ को पीछे छोड़ वह अपनी नम आंखें मलता हुआ निकल पड़ा रेगिस्तान में तलाशने। चेतन ने बहुत तलाशा, लेकिन उसे कहीं गगन के पैरों के निशान तक दिखाई नहीं दिए।
काश तुमने उड़ान न भरी होती, लेकिन ऐसा करके ही तुम उसकी पकड़ में आने से बचे हो। उफ, वह दुष्ट घिनौना सपेरा!
चेतन ने दूर तक फैली सूखी घास के बीच इधर उधर दौड़ भाग कर खूब तलाशा। वह रेगिस्तान में बसे गांव के सिरे पर कंटीली झाड़ियों की बाड़ तक पहुंच गया। फिर वहीं ठहर कर उसने अपनी नड़ पर अपनी पुरानी धुन बजानी शुरू की। उसे एक धीमी सी हूंक सुनाई दी। कहीं यह उसकी कोरी कल्पना तो नहीं? उसने नड़ में फिर फूंक मारी। इस बार उसे रेत के टीले के पीछे से आती जोर से रंभाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही चेतन कंटीली झाड़ियों को पार करने के लिए आगे बढ़ा, उसका अंगरखा चिर गया और धोती फट गई।
तू यहां है?
चेतन खुशी से उछल पड़ा। गगन निढाल पड़ा था, उसकी आंखों की सारी चमक गायब हो चुकी थी और उसका एक पैर शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था।
मेरे गगन, ईश्वर के गुण गाऊं, उसने तेरी जान तो बचाई।
चेतन घुटने के बल बैठकर अपने प्यारे दोस्त से मिला। फिर उसने बहुत होशियारी से गगन को लोहे के फंदे से आजाद किया। पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था।
घबराना नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। पहले मुझे जोहड़ से पानी लाना होगा।
चेतन बुदबुदाता जा रहा था।
अब मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जा सकता, अब उठाकर अपने साथ ले जाना होगा।
चेतन ने गगन के पैर के साथ बांधने के लिए एक झाड़ी से मजबूत सी छड़ी तोड़ी। फिर अपने साफे से कपड़ा फाड़ कर उसने गगन के पैर में पट्टी बांधी। चेतन ने सोचा कि जोहड़ तो काफी दूर है, पास वाले कुएं तक जाकर देखते हैं, शायद उसमें पानी हो। चेतन ने गगन को कस कर पकड़ रखा था और गगन ने अपना सारा भार चेतन पर डाल दिया था। किसी तरह चेतन हिम्मत दिलाकर उसे कुएं तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। कुएं के पास एक मटकी भी रखी थी, लेकिन उसके पेंदे में छेद था। चेतन ने अपने लाल साफे के कपड़े को पूरा खोला और उसके एक सिरे पर एक पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। पत्थर और उससे बंधा कपड़ा छपाक से पानी में जाकर गिरा। फिसल कर बिना जगत वाले कुएं में गिरना नहीं है, इसलिए चेतन पेट के बल लेटकर रेंगते हुए कुएं के सिरे तक पहुंचा। पानी में पड़े साफे के कपड़े को ऊपर खींच लिया। चेतन ने थोड़ा पानी गगन की चोंच में निचोड़ दिया। माल ढोक की जान में जान आई, वह उठा, लड़खड़ाया और फिर गिर पड़ा।
शाबाश मेरे गगन,
चेतन खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने सूखे होठों को भी गीला किया। चेतन साफे के कपड़े को अपनी जरूरत पूरी होने तक बार बार कुएं में डालता और निकालता रहा। शाम तक गगन की हालत इतनी सुधर गई कि बीच बीच में ठहर कर उड़ते हुए घर जाने लायक भी हो गया।
होए!
उसे देखते ही गांव के बच्चे शोर मचाने लगे। सभी ने एक जगह इकट्ठे होकर गगन को घेर लिया। काकी ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई जिसे लगाने से गगन के पैर मजबूत होने लगे।
चलो गगन, फिर चलते हैं,
वहीं जहां कुछ करने लायक काम है। यह कहकर चेतन भेड़ की देखभाल करने के लिए गगन को साथ लेकर चल पड़ा। एक दिन चेतन को कुछ दूर कई माल ढोक दिखाई दिए। उसे उनकी गहरी गूंजने वाली आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जो यह पक्षी बरसात के मौसम में एक दूसरे से मिलने पर निकालते हैं। कहीं कोई दूसरा माल ढोक मेरे गगन को तो नहीं पुकार रहा? अपने डैनों को फैलाकर इठलाते हुए गगन ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और उसकी एक गहरी आह सी निकल गई। फिर शानदार अंदाज में डैने पसार कर उसने बहुत दूर नजर आ रहे दूसरे माल ढोक की ओर उड़ान भरी। चेतन के नड़ के बोल स्वरों की पूरी उठान पर पहुंचे और फिर धीरे धीरे मंद होते चले गए। जयपुर फुट, रबड़ से बना एक कृत्रिम अंग है। हड्डी रोग के शल्य चिकित्सक डॉक्टर पी के सेठी ने मूर्तिकार रामचंद्र शर्मा को इसे बनाने को प्रेरित किया और उनके ही मार्गदर्शन में बारूदी सुरंगों के पीड़ितों के लिए 1968 में इसका आविष्कार किया। जयपुर में बनने वाले इस पैर को कम दाम में मिलने वाली स्थानीय सामग्री से बनाया जाता है। इसे बनाने और रोगी को फिट करना दोनों आसान है। इस पर पानी का असर नहीं होता। इसे लगाकर व्यक्ति दौड़ सकता है, उकड़ू बैठ सकता है, पेड़ चढ़ सकता है और दुपहिया वाहन भी चला सकता है। माल ढोक को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के नाम से जाना जाता है। मांस के लिए इसका शिकार होता रहा है और इसके निवास स्थान कृषि के कारण नष्ट हो गए हैं। यह लगभग एक विलुप्त प्राणी है। एक काले रंग की कलगी और पीली गर्दन और सिर वाला मालढोक शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, जिसका शरीर और पंख काले और भूरे रंग के होते हैं। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा है। अपनी टांगे पीछे की ओर फैलाए यह काफी नीची उड़ान भर सकता है। यह कभी हवा में लहरा नहीं पाता। यह घास, बीज, टिड्डे, गुबरेले, छोटे चूहों और रेंगने वाले प्राणियों आदि को खाकर जीवित रहता है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में पानी की भारी कमी से बचने के लिए राजस्थान में वर्षा का पानी मिट्टी से बने छोटे छोटे बांधों में जमा करके रखा जाता है। इन्हें जोहड़ कहा जाता है। ये अर्ध गोलाकार आकार की मुंडेरे ढलानों से बहते बरसात के पानी को खेती के लिए संजो के रखी जाती है। खेजरी का पेड़, जिसे वाइल्ड डेजर्ट ट्री भी कहते हैं, राजस्थानी लोगों के कई तरह से काम आता है। इससे मिलने वाले फल सांगरिया में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसे कच्चा या पकाकर खाया जाता है। इसके गिरे हुए पत्ते एक प्राकृतिक उर्वरक है, जबकि वृक्ष के अन्य भाग दूध की उपज बढ़ाने के लिए मवेशियों को खिलाए जाते हैं।
परी कथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? यदि ऐसा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया या फीडबैक सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई कहानियां आप सुन सकते हैं mlftpodcast.in पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।